नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे पितामह, आपसे ये जो मैं उच्च कोटि की बातें सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बराबर संसार में कौन भाग्यशाली है। मेरा हृदय बड़ी शांति को प्राप्त हो रहा है, पर जैसे अमृत पीते पीते किसी को तृप्ति नहीं होती है, ऐसे ही आपके सत्संग की बातों से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इतनी देर तक मैं आपसे ये पूछता रहता था जो मुझे पूछना चाहिए था, मेरी शंकाएं थी। अब आप अपनी तरफ से मुझे सत्संग की बातें बताओ कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए जिससे वह इस लोक में शांति को प्राप्त हो और परलोक में जाने के बाद फिर वापस जन्म मरण के चक्कर में न पड़े। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स युधिष्ठिर, पराशरम महात्मानम पप्रच्छ जनको नृप है। एक बार जनक जी महाराज पराशर ऋषि से मिले। पराशर ऋषि को प्राप्त करके जनक जी बड़े खुश हुए। जनक जी बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी और जीवन मुक्त राजा थे। वे सभी संतों का बड़ा आदर करते थे। पराशर ऋषि के आने पर उन्होंने अपने कल्याण के लिए प्रश्न किया और यही बात पूछी जो तुमने हमसे पूछी है, इस लोक में और परलोक में क्या व्यवहार करना चाहिए, किस वस्तु से हमें कल्याण मिलेगा बताइए। पराशर ऋषि ने कहा कि देखो जनक जी, धर्म एव कृत श्रेयान, मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य को ये देखना चाहिए कि जो काम पशु करते हैं वही काम हम करेंगे तो फिर हमारी पशुओं से क्या विशेषता रही। पशु है वो पशु योनि में जो कर्म करता है उससे वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, कल्याण नहीं कर सकता। वो पशु योनि में पड़ा हुआ पशु योनियों में ही फिरता रहता है। परंतु मनुष्य शरीर में आया हुआ प्राणी अपने ऊंचे लोक में जा सकता है, उसके लिए उसका धर्म सबसे बड़ा है। जैसे कोई भी वृक्ष बिना बीज के नहीं होता, ऐसे कोई भी सुख है वो पुण्य के बिना नहीं होता, धर्म के बिना नहीं होता। इसलिए इस संसार में डूबने से बचाने वाला एकमात्र धर्म है, धर्म का पालन करो। धर्म क्या है? इंद्रियों का संयम करो, क्षमा रखो, धैर्य रखो और संतोष धारण करो, सत्य बोलो, लज्जाशील रहो, अहिंसा रखो और कोई जीवन में व्यसन न आने दें। इस प्रकार का ये धर्म है। सुख और दुख तो अपने सामने आते ही रहेंगे। कितनी बार जीव के सामने सुख दुख आए हैं, कितनी बार आते रहेंगे। इसलिए सुख और दुख की लहर में अपने को फंसने मत दो। स्त्री पुत्र और धन के अंदर आसक्त मत हो। इनके साथ हमारा कोई सदा का संबंध नहीं है। क्षत्रिय होकर यदि डरपोक हो, ब्राह्मण होकर के वो खाद्य अखाद्य का विचार ही न करे, सब कुछ खाने लग जाए। वैश्य होकर के कोई उदर पूर्ति के लिए चेष्टा ही न करे, और शूद्र होकर के आलस्य को पकड़ ले, तो ये सब शोचनीय अवस्था को प्राप्त होते हैं। विद्वान है लेकिन आचरण अच्छा नहीं है। अच्छा कुलीन आदमी है लेकिन वह भी सदाचार का पालन नहीं करता। विषयों में योगी है लेकिन विषयों में राग रखता है, रागी युक्त है। और पचमानो आत्म हेतो हो, गृहस्थी है, भोजन बनाता है लेकिन वो देखता है बस हम इतने लोग ही खाने वाले हैं, इतने के लिए बनाओ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए अपना उदारता से भोजन कराना चाहिए। कोई एक अतिथि, कोई एक ब्राह्मण, कोई एक भिक्षुक, कोई न कोई जरूर घर में आना चाहिए। उसके बिना भोजन वो पवित्र नहीं मानते। मूर्खो वक्ता, बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए बैठ गए, स्वयं समझता ही नहीं है, स्वयं का आचरण ही नहीं है, वो मूर्ख वक्ता होता है। नृपहीनं च राष्ट्रम, और राजा से रहित कोई राज्य हो, ये सब गर्त में जाने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार से धर्म विहीन जीवन होता है, वो खड्डे में पटकने वाला होता है। मनोरथ रथम प्राप्य, ये मनमय मनोमय रथ है, इसको प्राप्त करके जिसमें इंद्रियां रूपी घोड़े जुते हुए हैं और ज्ञान की वृत्तियों की डोरी बनी हुई है, रश्मिभिर ज्ञान संभूत ही, उनको अपने हाथ में पकड़ करके चलता है, वो बुद्धिमान होता है। सुनो महाराज जनक जी, ये मानव जीवन की आयु है, मानव जीवन का शरीर है, आयु है, समय है, बहुत दुर्लभ है। न सुलभम, ये सुलभ नहीं है। नावकर्षित, इसका अवकर्षण नहीं करना चाहिए, उत्कर्ष करना चाहिए, अवकर्षण नहीं करना चाहिए, ऊंचा बढ़ाना चाहिए, नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। उत्कर्षार्थम प्रयतेत, ऊंचे ऊंचाई की तरफ ले जाओ। जो मनुष्य दुष्कर्म करता है वो सब लोगों की दृष्टि में गिर जाता है। पापानुबंधम यत् कर्म यद्यपि स्यान् महाफलम, पाप से जो बंधन करता है उसका सबसे बड़ा लाभ, यदि कितना ही बड़ा सुख मिलता हो, पाप करने पर सुख मिलता हो, तो भी मेधावी पुरुष उस सुख की तरफ विचार न करके पाप की तरफ विचार करे, उसका त्याग करे। आज की बात है, आज सुबह एक टेलीफोन आया, एक सज्जन का टेलीफोन आया कि एक ब्राह्मण है, वो मदिरा का काम करता है, बहुत बड़ा काम है उसका, और उसने एक गौशाला के अंदर 5 करोड़ रुपए लगाए हैं, 5 करोड़ एक गौशाला में। अब बताइए उस आदमी का कल्याण होगा कि नहीं होगा? यदि यूं कहें कि कल्याण हो जाएगा, तब तो वो जो मदिरा का काम करता है तो वो उसका समर्थन हो जाता है, और यदि कहें कि उसका कल्याण नहीं होगा तो फिर गौ सेवा से कल्याण होता है, गायों के अंदर पैसा लगाने से अंतःकरण पवित्र होता है, ये बात नहीं बनेगी। क्या 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 स्थिति होगी उस आदमी की, प्रश्न किया। तो महाराज जी से सुना हुआ था, कह दिया कि देखो वो जो मदिरा का काम करता है उसका पाप उसको अलग लगेगा, और गौ सेवा के अंदर पैसा लगाया है उसका पुण्य उसको अलग मिलेगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा, पाप और पुण्य दोनों के बीच में बैठा हुआ है। पाप करता है कि पाप का पैसा पुण्य में लगा कैसे, ये आश्चर्य है। पाप की कमाई का पैसा पुण्य में कैसे लगा दिया उसने। तो कोई न कोई अच्छे महात्मा का संग किया होगा, किसी जन्म में अच्छा संग किया होगा, उसका संस्कार यहां काम आया, लेकिन कल्याण तो नहीं होगा। कि साहब उसका तो वहां अभिनंदन किया जाने की बात है, अभिनंदन करेंगे उसका, कि अभिनंदन करो तो भले ही करो, गौ सेवा का उदाहरण तो है ही, गायों के लिए अच्छा ही है, पर कल्याण की एक चीज ही अलग होती है। तो पाप करें और उसके बदले में शान महाफलम बहुत बड़ा सुख भी मिलता हो तो तन्न सेवे तो मेधावी, बुद्धिमान आदमी उसका बिल्कुल सेवने, दुख पाए तो पा लेंगे और पाप नहीं करेंगे। इसीलिए मूर्ख आदमी को सुख मिल सकता है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। विरक्तम शोध्यते वस्त्रम, देखो ये हमारे कपड़े सफेद रहते हैं ना, इसमें कोई सा ही रंग चढ़ा दो, पीला चढ़ा दो, ये लाल चढ़ा दो, गहरा लाल चढ़ा दो, काला चढ़ा दो, कोई रंग चढ़ा, पर इसके ऊपर यदि काला रंग चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही जो पाप करने वाला होता है तो वही पाप का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसका अंतःकरण जल्दी पवित्र नहीं होता है। इसलिए सोच विचार करके चलना चाहिए, मन को खूब अच्छी तरह से समझाते रहना चाहिए कि देख मन, तू संसार में दौड़ता तो है लेकिन आज तक तुझे क्या मिला। संचित्य मनसा राजन विदित्वा शक्यम आत्मने है, संसार का सुख तुमने देखा, क्या तुमको मिला? यदि तुमको सुख मिल गया तो तुम्हारे क्यों इच्छा होती है सुख की, और यदि नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा। इसलिए दोनों बातों पर खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। देखो इस संसार में जो प्राणी हैं ये सब आपस में अपने स्वार्थ का संबंध रखने वाले हैं। यदि अपना सगा भाई भी है, सौदर्यम भ्रातरम अपि किमुतान्यम पृथक जन्म, उसका भी स्वभाव अनुकूल नहीं होता तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, दूसरों की तो फिर बात ही क्या है। श्रेष्ठ पुरुष को कोई दान देता है और श्रेष्ठ पुरुष से कोई दान लेता है, ये दोनों चीजें बहुत बड़ी हैं, ये मामूली नहीं है। परंतु फिर भी दान लेने की अपेक्षा दान देना ही ऊंची बात है। इसी प्रकार से पाप और पुण्य, पुण्य और मोक्ष, इन दोनों में मोक्ष सबसे ऊंचा होता है। मनुष्य कभी कभी पुण्यों पर तो विचार करता है परंतु मोक्ष पर विचार कम करता है। न्याय से धन कमाओ, न्याय से धन कमाया हुआ होगा वो उस धन की स्थिरता रहेगी, अन्याय से कमाया हुआ धन यूं ही इधर उधर खर्च हो जाएगा और मन में संताप दे देगा। अपने पास जो धन होता है उसके ऊपर अपना ही अधिकार नहीं होता है, देव देवता अतिथि भृत्य पितृभ्य सबका वो ऋणी होता है, इसलिए सबको देने के बाद अपने लेना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। अनर्हाश्चार्यताम प्राप्ता, नीच जात में भी संत पैदा हुए, उनकी भी बड़ी पूजा हो गई। जो पूजा के योग्य नहीं थे, नीच जाति के पुरुष की पूजा थोड़ी ही होती है, पर भगवान विष्णु की भक्ति की तो तस्य प्रसादात, उनकी कृपा से संते स्मृत्वा तमेव है, भगवान की पूजा करने से बड़े महान बन गए। इसलिए सदाचार है, श्रेष्ठ आचरण, ये कभी लुप्त नहीं होते हैं। देखो महाराज, मानम त्यक्त्वा, अपना अभिमान अपने अंदर न आने दे, इससे बिल्कुल डरो। और बूढ़े बड़े श्रेष्ठ पुरुष से उनकी सेवा करो। मन में कोई होशियारी मत आओ, मत लाने दो, चालाकी मत लगने दो। ऐसा पुरुष संसार में सबका आदरणीय बनता है। पराशर ऋषि आगे बोलते हैं कि देखो, सत्संग में जाने पर मनुष्य के हृदय में नई नई बातें पैदा होने लगती हैं। जैसे सूर्य के पास जाते हैं, यथोदय गिरौ द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते, ज्यो ज्यो सूर्य के सन्मुख जाते हैं त्यों त्यों स्पष्ट साफ दिखता है, और जड़ता दूर होती है, ठंडक दूर होती है, भय दूर होता है। इसी प्रकार से महात्माओं के सत्संग के अंदर जितना ज्यादा उसमें आप प्रवेश करोगे, उतना ही आपको नया प्रकाश मिलेगा। किसी व्यक्ति के अंदर दोष मत देखो, ये याद रखो कि सब व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण जरूर होते हैं। उन गुणों के ऊपर दृष्टि डालो और उस आदमी से अपने गुण स्वीकार करो। ब्राह्मण के पास दान से आया हुआ धन हम अच्छा मानते हैं, क्षत्रिय का युद्ध से जीता हुआ धन अच्छा मानते हैं, वैश्य के पास न्यायपूर्वक जो खेती आदि से अन्न मिलता है, द्रव्य मिलता है, वो पवित्र है, और शूद्र को जो सेवा करने से धन मिलता है वो प्रशंसनीय है। हम आपको फिर ये बताना चाहते हैं कि धन कमाना ये जीव का उद्देश्य नहीं है। मानव शरीर ये चीजें कमाने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन धर्म कमाने के लिए मिला हुआ है। इसलिए आपको धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। तस्मात् गुणेषु रज्येथा, आपको उत्तम गुणों के अंदर प्रेम करना चाहिए। गुण ही निर्गुणोपि दुर्बुद्धिर आत्मनः सोति रज्यते, अभिमान से दुर्बुद्धि मनुष्य अपने को बड़ा मानता है। जिसकी बुद्धि ठीक रहती है उसके अंदर अभिमान का प्रवेश ही नहीं होता है। गृहस्थ के विषय में बात बताते हैं, गृहस्थ है ये बहुत बड़ी तपस्थली है, ये तपस्या करने की जगह है। तपो विधिन्तु वक्ष्यामि, गृहस्थ के अंदर अपने मन का संयम सबसे पहले होता है, क्योंकि वो बाल्यावस्था में माता पिता के वश में रहता है, बड़ा होने पर अपने से बड़ों के वश में रहता है। माता पिता आदि बड़े पुरुष चले जाते हैं तो अपने परिवार के और लोगों के वश में रहता है, इसलिए उसका मन बहुत जल्दी वश में रह सकता है। अनेक उपायों से मन को वश में करने लगते हैं, उसके बजाय अपने परिवार में दूसरों के मन की बात रखो, आपका मन बहुत जल्दी वश में हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। गृहस्थ के अंदर राग और द्वेष के वशीभूत मत हो, ये तपस्या है। द्रव्य वशानुगम और धन के वश में मत हो, ये आपकी तपस्या है। धन के वश में होते ही लोभ पैदा होता है, और लोभ जब अंतःकरण में चारों तरफ छा जाता है तब उसको धन आदि बहुत बड़ी चीजें मालूम देती हैं। रुपया बहुत बड़ा है साहब, रुपया माँ बाप है, रुपया ऐसा है, इतना ज्यादा वो धन में डूबता है कि फिर वो अपने परिवार में किसी की भी परवाह नहीं करता, केवल धन के लिए लालायित रहता है। और जब उस जैसे ही दिमाग में भावना रखने वाले लोग उसका सम्मान करते हैं, कहो साहब ये बहुत बड़े धनी, आओ साहब आपकी क्या बात कहनी साहब हो, तब तो वो अपने अंदर इस बात को और ज्यादा पुष्ट करता है, और फिर अपने ऐश्वर्य से भोगों का प्रदर्शन करता है, फिर तस्माद विनश्यति, फिर उसका पतन हो जाता है। इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। देखो हमारी बात बड़ी कड़वी है जनक जी, लेकिन आदमी के ठोकर कब लगती है, जब संसार में बहुत ज्यादा जिसमें प्रेम होता है वो चीज खिसक जाती है। स्त्री में प्रेम होता है, स्त्री मर गई, धन में प्रेम है तो धन चला गया, शरीर में मैपन और शरीर में भयंकर रोग आ गया, तब उसको वैराग्य होता है। ये गृहस्थ की बहुत ऊंची अवस्था होती है, परंतु तपस्या की दृष्टि से तो देखते नहीं, भोगी भोग की दृष्टि से देखते हैं तो धन नाश पर रोते हैं, स्त्री आदि के मरने पर रोते हैं। अरे ये तो आपके समझने की स्थिति आई है। निर्वेदाद आत्म संबोध है, निर्वेद बोलते हैं वैराग्य को, वैराग्य से आत्मज्ञान होता है, और संबोधात शास्त्र दर्शनम, और जो जो आप अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करेंगे त्यों त्यों शास्त्रकार इनका सब ज्ञान आपके सामने आ जाएगा। राजन तप एवानु पश्यति, फिर वो ये गृहस्थ का सबसे बड़ा तप होता है। गृहस्थ के तप को छोड़ करके लोग दूसरे दूसरे तप में जाते हैं, ये हमको बड़ा आश्चर्य होता है। गृहस्थ आश्रम स्वयं ही तपोवन है। दुर्लभो ही मनुष्येन्द्र नर प्रत्यवमर्शमान, प्रत्यवमर्शमान, ऐसे आदमी बड़े दुर्लभ हैं कि जो स्त्री पुत्र धन आदि से मिलने वाला सुख बंद हो गया फिर भी वह उनमें मोह नहीं छोड़ता, ऐसे बहुत कम है। वह तपस्वी पुरुष ही इस बात को समझ सकता है। जिस प्रकार से लोभ से मनुष्य कष्ट पाता है, उसके साथ साथ असंतोष भी दुख का कारण होता है। असंतोषो असुखाय, जो चीज मिलती है उसमें तुमको संतुष्ट रहना चाहिए, बुद्धि नष्ट हो जाएगी असंतोष से, वो न्याय का विचार नहीं कर पाएगा, इसलिए संतोष रखना चाहिए। सुख की सामग्री जब नष्ट हो जाती है, वेदना तत्क्षयात पुनः, तब मन में वेदना होती है, तकलीफ होती है, ऐसे समय में अबुधा न प्रशंसन्ति। मूर्ख आदमी ये नहीं समझते हैं कि अरे ये तो मोक्ष का रास्ता खुल गया, इतने दिन तक रास्ता बंद था, मोक्ष का रास्ता खुल गया, तुमको उत्तम सुख मिलेगा। जब संसार का सुख चला गया तो अभी तुम्हारे लिए मोक्ष के सुख का रास्ता है। अबुधा न प्रशंसन्ति, मूर्ख आदमी की समझ में ही नहीं आती। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इन दोनों का ठीक ज्ञान गृहस्थ आश्रम में होता है, क्योंकि प्राणियों का संयोग और वियोग प्रारब्ध से होता है, तो वहां पर वो प्रारब्ध को देखे, और पुरुषार्थ के लिए वह अपने कर्तव्य कर्म की ओर देखे। तो गृहस्थ है कर्म निश्चयम्, इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को अपने कर्म का निश्चय करना चाहिए, कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए कि मैं क्यों हूं यहां, गृहस्थ में क्यों हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सब के लिए कोई इनमें बड़ा और छोटा नहीं है, अपने अपने कर्तव्य कर्म से सबको एक कल्याण मिलता है। नचापि शूद्र पतितो ही निश्चयो, नचापि संस्कार मिहार रतीति वा श्रुति प्रवृत्तम, नच धर्म धर्म आपनुते नचास्य धर्मे प्रतिषेधन अंकृतम। शूद्र को जब ये उपनयन संस्कार आदि के लिए वर्जित किया गया तो उसको पतित समझ करके नहीं किया कि पापी है, पतित है, छोटा है, इसलिए इसको मना किया, ये बात नहीं है। उसको जो वैदिक अनुष्ठान से अलग रखा है वो इसलिए रखा है कि वो उसका स्वयं का काम इतना पवित्र है कि उसके लिए इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। वैदेह कम शूद्र मुदाहरंती, बड़े बड़े ऐसे ऐसे शूद्र वे हैं जिन्होंने सेवा भाव से बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। इसलिए जनक जी ये चारों वर्ण की व्यवस्था, ये एक सबके अंदर स्नेह बढ़ाने की व्यवस्था है। तुम कहते हो कि मनुष्य में जाति बड़ी होती है कि कर्म बड़ा होता है। हम कहते हैं कोई आदमी कितनी ऊंची जाति में जन्म ले ले, यदि उसका कर्म अच्छा नहीं है तो उसके लिए सब लोग कहेंगे कि अरे तुम बड़े गलत चलते हो। कर्म तद्दूषयत्येनम, उसके पाप उसको दूषित कर देते हैं। ऊंची जाति में भी जन्म ले लिया और नीची जाति में यदि छोटी जाति में जन्म लिया तो वो कर्म से बड़ा महान हो जाता है। इसलिए सर्वे वर्णा धर्म कार्याणि सम्यक कृत्वा राजन सत्य वाक्यानि चोक्त्वा त्यक्त्वा धर्मम दारुणम जीवलोके यान्ति स्वर्गम नात्र कार्यो विचार है। इसलिए सभी वर्ण मनुष्य शरीर के बाद अपने अपने कर्म फल के अनुसार सब एक हो जाते हैं। यहां सबके कर्म अलग किए, बड़े छोटे का काम ही नहीं है। पिता सुखायो गुरुव स्त्रियश्च न निर्गुणानामि भवन्ति लोके, माता पिता गुरुजन स्त्रियां ये कोई भी ऐसे नहीं है कि जो उसके हितेशी न हो। इनके द्वारा बड़ा हित मिला है तो अपने को भी चाहिए कि इन सबका हित करे। चाहे कितनी बड़ी आफत आ जाए, विषम उद्बंधनम दाह, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का संग किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। देखो महाराज, जो चीज पैदा होती है तो जो पैदा होती है उसके अंदर मृत्यु समाई हुई है, और जो मरा हुआ दिखता है प्राणी उसके अंदर जन्म समाया हुआ है। जन्म और मृत्यु को साथ साथ देखना चाहिए। यदि हमारे जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी शत्रु समझ रखा है तो वो व्यक्ति अज्ञानी है कि मेरे तो वो शत्रु है, और तो सब ठीक है, वो एक खराब है, वो मेरा शत्रु है। ऐसी जिसके मन में भावना है वो अज्ञानी है, इसलिए किसी को भी शत्रु न समझे, किसी को भी बैरी न समझे। जनक जी ने पूछा कि आयु समाप्त तो हो ही रही है और संसार से वो कल्याण चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस आदमी को ढूंढना चाहिए कि मेरी आसक्ति कहाँ है। इसका पता कैसे चलता है महाराज कि सबसे पहले उसका मन कहाँ जाता है, जहां भी मन जाता है उसमें उसकी आसक्ति है, वहां से अपना मन हटा लेना चाहिए। जो ही आसक्ति का त्याग होगा उसका कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज खूब अच्छा आपने हमको सत्संग सुनाया, और भी कोई आपको ऐसा सत्संग याद हो तो बताइए कि एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ। पितामह भीष्म कहते हैं साध्य लोगों का हंस के साथ में वार्तालाप हुआ। साध्य, साध्य कौन है? देवता। जैसे देव योनि है ना, सिद्ध है, गंधर्व है, साध्य है, विश्वदेव है, चारण है, और देवता है, गंधर्व है, ये सब देव योनियां हैं। इन देव योनियों के अंदर एक जाति के थोड़े थोड़े इन लोगों में थोड़ा मामूली मामूली फर्क होता है। तो ये साध्य देव है, विश्व देव है। तो एक बार उनको हंस मिल गए तो साध्य देव ने पूछा, कई साध्य थे अनेक संख्या में, शकने वयस्म देवा भाई, हे पक्षीराज हंस जी, हम आपसे पूछते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, हमको मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे संतों के बीच में आने से मोक्ष की जागृति होती है, ये मोक्ष कैसे होता है। तो हंस कहते हैं कि हे अमृताशी साध्यों, अमृत खाने वाले, अमृत पीने वाले देवताओं, देखो आज तुमको पता चला ना कि अमृत पीते हो, बढ़िया चीजें खाते हो, बढ़िया चीजें रहते हो, परंतु आत्म कल्याण का ज्ञान तुमको भी नहीं है। तो हम तुमको बताएं, देखो आत्म कल्याण करने के लिए सदा सबसे पहले, सबसे पहली बात है अपनी वाणी को कठोर मत बनाओ। वाक सायका वदना निष्पतंती, ये वाणी रूपी बाण जब कलेजे के हृदय में चुभते हैं किसी के, तो वो कभी कल्याण नहीं कर सकता है। अपने वाणी रूपी बाण को वश में रखो। अब ये मन रूपी, ये मुख रूपी तुणीर है, इसी में ही रहना दो। वह तुणीर यूं यहां रहता है, धनुष यूं है, बाण ले आई हूं, ये बाण ले आई हूं, तुणीर भरे रहते हैं। भगवान राम का तुणीर अक्षय था, कितने ही बाण निकालो वापिस बाण आ जाए। अर्जुन का ऐसा ही था, इनके पास कई शस्त्र, ऐन्द्रास्त्र वगैरह, कभी कोई खाली भी हो जाता तो पीछे उनके रथ के पीछे वहां बाण का फिर इस हाथ से निकाल दे रहे हो। तो वाक सायका, ये मुंह है, ये तुणीर है, निकलने वाले टेढ़े मेढ़े शब्द हैं, ये बाण है। जो आदमी इन बाणों को कभी दूसरे के द्वारा फेंके हुए बाणों को सह लेता है वो संसार में पंडित कहलाता है। और सुनो, देखो एक बात और बताएं, जो आदमी कटु वचन के बदले में कटु वचन बोलता है वो आदमी अपने पुण्य है, उन पुण्यों को उसके अंदर फेंक रहा है, और जो उसके कटु वचनों को सह लेता है तो उसके पुण्य उसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। दूसरे का पुण्य हम कैसे लेवे, ये सबसे बढ़िया उपाय है। जो हमारे साथ बुराई करे उसकी बुराई मत करो, जो हमारी निंदा करे उसके साथ निंदा मत करो, जो हमें कड़वा बोले उसको कड़वा मत बोलो, उसके सारे पुण्य अपने को मिल जाएंगे, उसके तो पुण्य खत्म हो जाएंगे अपने में आ जाएंगे। आक्रुष्य मानो नवदामि किंचित, वो हंस बने हुए बोलते हैं मीटिंग आवर, कोई मेरी निंदा करता है तो मैं खुश हो जाता हूं। आक्रुष्य मानो नवदामि किंचित क्षमाम्यहम ताड्यमानश्च नित्यम, कोई मुझे यूं फेंकता है, उड़ाता है मेरे पास आके तो मैं थोड़ा दूर जाके बैठ जाता हूं, प्रसन्नता से उसको देखता हूं, उसको क्षमा करता हूं। कोई मुझे मारे तो मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि क्षमा के समान कोई दूसरा संसार में कवच नहीं है, अपने ऊपर कवच पहन लेते हैं। वाचो वेगम मनसक क्रोध वेगम, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग, इन सब वेगों को जो सहता है वो वास्तव में ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। वेदस्य उपनिषद सत्यम, वेद का सार, वेदाध्ययन का सार क्या है? सत्य। सत्य से उपनिषद दम है, और सत्य का सार है इंद्रियों का संयमन, और दमस्य उपनिषद मोक्ष है, और इंद्रिय संयमन का सार है मोक्ष। ये हमने तुमको बहुत ऊंची बात बताई है। संसार में भाई क्रोध करने वालों पर क्रोध नहीं करने वाले का तपस्या ऐसे ही निखरती है जैसे आग के अंदर सोना शुद्ध होता है। आक्रुष्यमानो नाक्रुष्येत मन्युरेवम तितिक्षा, इसका नाम तितिक्षा है। कड़वे वचन बोलने वाले बहुत लोग हैं, जिसको मोक्ष चाहिए वो और ही ढंग से दुनिया को देखता है, कड़वी बात को बहुत मीठे शब्दों में बोलता है, वो अपने वाणी से दूसरे के क्रोध को पी लेता है, इतनी उसमें शक्ति होती है। देखो सदा हम आर्या निवृदोप्युपासे, कितनी अच्छी बात है कि हे साध्यों, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है कोई ज्ञान ध्यान की, क्योंकि मैं तो स्वयं सब बात जानता हूं, लेकिन मैं स्वयं अच्छे अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों के पास बैठता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, इसलिए नहीं कि मैं जानता नहीं इसलिए सुनता हूं, नहीं, सुनना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों के मुख से बात बहुत अच्छी होती है, उनका संग करता हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार की तृष्णा न, वाप्य हम लिप्समान परैमी, मेरे पास कोई तृष्णा नहीं है, किसी वस्तु की तृष्णा नहीं है, अतृष्ण हूं लेकिन सावधान हूं कि कहीं मेरे में तृष्णा न आ जाए। न हम शप्त प्रतिशमामि किंचित, प्रतिशपामि किंचित, जो मुझे कोई शाप दे तो मैं उसको बदले में शाप नहीं देता हूं, इसलिए नहीं देता हूं कि भाई मैं शाप दूंगा तो मेरी तपस्या, मेरा बल, ये सब उसमें खत्म हो जाएगा, नहीं। मानव शरीर से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और इसी काम के लिए मनुष्य आया है। चंद्रमा है वो बदलों के अंदर ढका रहता है और फिर उसमें से प्रकट होता है, तो चंद्रमा कितना अच्छा प्रकाशित होता है। ऐसे ही धैर्यवान पुरुष होता है, वो दूसरों की चोटें खा खा करके जब अपना जीवन निर्मल बना लेता है तो वो सबका प्रिय हो जाता है। इसलिए अज्ञानी लोग कटु वचन कहें तो अभी उनका सब प्रकार से सम्मान ही करना चाहिए। अमृत सेव संतृप्येत, क्या बातें हैं, देखो बातें तो बहुत अच्छी हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि एक तरफ अमृत पड़ा है और एक तरफ अपमान है, इन दोनों में से किस चीज को स्वीकार करोगे, तो बहुत समझदार हो के अपमान दे दीजिए, अमृत मत दीजिए। अरे अमृत है अमृत, ना ना, इस अपमान को ही मैं अमृत माना मानता हूं, इससे तो मैं अमर हो जाऊंगा, इससे क्या है शरीर अमृत होगा, शरीर अमृत अमर हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपमान रूपी अमृत ये बहुत बढ़िया है। क्रोधी पुरुष कोई अच्छा काम करता है, दान पुण्य करता है, यज्ञ करता है, सब खत्म हो जाता है। और सत्य और सरलता से रहने वाला व्यक्ति दिखने में कोई दान पुण्य वगैरह नहीं करता, लेकिन वो सबसे बड़ा दाता है, बहुत बड़ा दान करता है। आचक्षे हम मनुष्येभ्यो देवेभ्य प्रतिसंचरण। हे साध्यों, मैं तो सब देवताओं को, मनुष्यों को, सबको घूम घूम करके और उनको बार बार बोलता हूं कि देखो, संतों का संग करो। सदा देवा साधु भी संबदंते, साधुओं से बात करो, संतों से बात करो। नमानुषम विषयम यान्ति द्रष्टुम। मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये क्षण भंगुर है और इसके विषय भी क्षण भंगुर है, इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो। ये अभी दिखते हैं लेकिन ये हमारे हाथ में रहने वाले नहीं है, ऐसे विचार करके और मैं लोगों को बोला करता हूं। हंसों ने कहा महाराज बड़ी कृपा, साध्यों ने कहा महाराज आपने हमारे पर बड़ी कृपा की, हम जो है आपके उपदेश से बड़े कृतार्थ हो गए। पितामह भीष्म कहते हैं उसके बाद साध्य लोग अपने स्वर्ग में चले गए। एतद् यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वर्गाय च ध्रुवम दर्शितम देव देवेन परमेणाभ्ययेन च। ये वास्तव में हंस बनकर के ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान कहा था, ये मैंने तुमको ज्ञान बता दिया। अब युधिष्ठिर महाराज सांख्य और योग के विषय में पूछते हैं। सांख्य और योग है, ये दोनों अलग विषय हैं। ये पितामह भीष्म इनके बारे में आगे बोलेंगे। राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण